ओम शांति। शिव बाबा ने जब प्यारे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए उस समय अंतिम दिन इन तीन शब्दों का उच्चारण किया, मीठे बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। वास्तव में सारे ज्ञान का सार इन तीन शब्दों में समाया हुआ है और इन तीनों शब्दों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं उतना निर्विकारी बनते जाते हैं और जितना निर्विकारी बनते जाते हैं उतना निरहंकारी बनते जाते हैं। तो निराकारी से निर्विकारी हम कैसे बनते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। निराकारी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, तो आत्मा एक ये चैतन्य बीज है देह रूपी वृक्ष का, जीवन रूपी पेड़ का। तो आत्मा रूपी बीज से जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं और देह अभिमान रूपी जो बीज है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों के फल और फूल लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इस देह अभिमान रूपी बीज को योग की अग्नि में भस्म करना है और आत्मा रूपी चैतन्य बीज को स्नेह का और पुरुषार्थ का पानी देना है ताकि हमारे जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुण बहुत लगते जाएं। तो आवश्यकता है निराकारी स्थिति का अभ्यास बढ़ाने की। हम कहते हैं हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है, ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। प्यार है बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी निशानी क्या है? निराकारी शिव बाप से प्यार की निशानी है सदा निराकारी स्थिति में स्थित रहना और निराकारी दृष्टि से ही सबको देखना। ब्रह्मा बाप से हमारा प्यार है उसकी निशानी क्या है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना और सबको फरिश्ता स्वरूप में ही देखना। जब हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहते हैं और दूसरों को फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा उनके तरफ प्रवाहित होती है और उनको एक सुकून मिलता है। तो ये पुण्य कर्म है। तो निराकारी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर रोज एक प्रयोग अमृत वेले करना है। उस प्रयोग को अगर आप प्रैक्टिकल में लाते हैं तो आपकी निराकारी स्थिति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। वो प्रयोग ऐसा है, जैसे आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और ऐसा अनुभव करना है निराकारी शिव बाप ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश होकर मेरे सामने विराजमान है, मेरे खटिया के पास या जहां मैं बैठा हूं मेरे सामने विराजमान है। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं, तो निराकारी बाप मुझे निराकारी स्वरूप का तिलक लगा रहे हैं, मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं निराकारी स्वरूप का, और मुझे वरदान भी दे रहे हैं बच्चे निराकारी भव। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, उस तिलक पर बाबा दूसरा विजय का वी शेप का तिलक भी लगा रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे सारे दिन भर में विजयी बनकर रहो। तो मैं आत्मा डबल तिलकधारी हूं, ये स्मृति अगर सारे दिन भर में हमें रहती है तो निराकारी स्थिति बहुत सहज हमारी रहती है। सत्यता की शक्ति बढ़ना अर्थात सत्य स्वरूप में टिकना और सत्य स्वरूप देखना, ये देह का स्वरूप जो है ये झूठा स्वरूप है, नकली स्वरूप है। इसलिए जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते हैं और अपना काम करते हैं पाठ बजाते हैं, ऐसे हमें समझना है मुझ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, पाठ बजा रहा हूं और मैं आत्मा रात को अपने पास घर में चली जाऊंगी बाबा के पास। तो जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। हमेशा ऐसा समझना है मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं ऐसे इस धरती पर हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारे चमक रहे हैं, दिव्यता की रोशनी फैला रहे हैं और हम सभी चैतन्य सितारों को देखकर बाबा भी हर्षा रहे हैं और बाबा वतन से हम सभी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसी सुंदर अनुभूति हमें करना है जब हम संगठन में बैठे होते हैं। एकदम बेघर अर्थात बेघर समझ, ये घर भी मेरा नहीं है, ये भी मैंने किराए का लिया है, मैं बेघर आत्मा हूं, मेरे बिल्कुल गरीब आत्मा हूं, मुझे रहने के लिए घर भी नहीं है। तो जितना जो गरीब होता है उतना वो परमात्मा के करीब अनुभव करता है, एकदम कंबाइन अनुभव करता है। जितना देह की कंपनी को हम छोड़ते हैं भूलते हैं उतनी हमें परमात्मा की कंपनी स्वतही मिलती है। तो एकांत में बैठकर विदेही स्थिति की तपस्या हमें करते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से ये तपस्या बहुत की, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का बहुत अभ्यास किया और अपनी निराकारी स्थिति को बहुत निखारा। और जो भी सामने आता था बाबा हरेक के ब्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार ही देखते थे। जो ब्रुकुटी के अंदर छिपी हुई आत्मा है वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी, इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो हमें भी गुप्त रीति से ये अभ्यास करना है। अभी निराकारी स्थिति से हम निर्विकारी बनते जाते हैं, क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहकर इस देह को हम भूल जाते हैं। बाद में निराकारी घर की हमें याद आती है और निराकार की बाप की स्मृति में हम टिकते हैं। जब पतित पावन परमात्मा की याद में हम टिकते हैं तो हमारे विकर्म भस्म होते जाते हैं और आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। लेकिन प्रायः देखा गया है हम हर रोज ज्ञान और योग की पालना बाबा से ले रहे हैं, प्रभु पालना में पल रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं, सेवा के क्षेत्र में आते हैं, तो कभी कभी हमें फीलिंग आ जाती है, कभी कभी रोब आता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का गुस्सा भी हम कर लेते हैं। हर रोज ज्ञान और योग की पालना लेते हैं, फिर भी आत्मा में ये जो विकारों के अंश हैं, आत्मा पर जो विकारों के दाग लगे हुए हैं, वो अभी भी हमारे में हैं। अभी इन विकारों के अंशों को भी नामों निशान सहित समाप्त अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बाबा का इशारा है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो, क्योंकि साधारण योगाभ्यास से ये संभव नहीं है। साधारण योगाभ्यास से हमारे जो कठोर संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, वो नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं हैं। उसके लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए जब भी हम नमाज शाम के समय या अमृत वेले बैठक का योग करते हैं, उस समय ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास हमें करना ही है। इस दृढ़ता से हमें बैठना है। अमृत वेले हमें साधारण रीति से नहीं बैठना है, बहुत दृढ़ता से बैठना है कि आज मैंने शक्तिशाली योग की अनुभूति करना ही है, होके रहेगी, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता होती है उतनी ही उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि जिस कार्य के प्रति हमारी दृढ़ता होती है उसके पीछे समय और शक्ति का खजाना हम लुटा देते हैं, और हमें मन इच्छित फल प्राप्त होता है। जो हम चाहते हैं वैसा हमें अनुभव होता है। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ हमें अमृत वेले नमाज शाम के समय बैठना है और शक्तिशाली योगाभ्यास का एक ही सीक्रेट है, परम धाम में ज्ञान सुरेश शिव बाबा को हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। परम धाम में बाबा के बाजू में बैठना है और दिव्य चक्षु से हमें बाबा के सुंदर स्वरूप को देखना है। और देखने में संपूर्ण एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। एकांतवासी बनकर एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते रहें। एकांत माना एक के अंत में खो जाएं और एकाग्रता अर्थात पूर्णतया उसमें लीन हो जाए, एकाग्र मन बुद्धि को करें, तब हमें ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होती है। उसको स्पष्ट करने के लिए सिंपल उदाहरण है, गर्मी के दिन है, मई जून का माह चल रहा है, मेरे पास एक छोटा सा पेपर है, मुझे उसको सूर्य के प्रकाश में जलाना है, कड़क धूप है, लेकिन 10 दिन से मैंने वो पेपर को सूर्य की रोशनी में रखा है, फिर भी नहीं जल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी उसको जलाना है। तो धूप में हमें बैठना है, उस कागज के पेपर के टुकड़े के ऊपर मैग्निफाइंग लेंस पकड़ना है सूर्य की रोशनी में, जैसे सूर्य की किरणें उस मैग्निफाइंग लेंस पर पड़ती हैं और लेंस जैसे पास होती हैं, तो लेजर किरणें अर्थात प्रचंड शक्तिशाली वो बनती हैं और ऐसे शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर पड़ती हैं, कागज पर पड़ती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती है और उस अग्नि में पेपर सेकंड में जल जाता है। इससे हमें ज्ञान सूर्य शिव बाबा को परम धाम में बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है, ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से पास होती रहेगी, जैसे पास होगी वो लेजर किरणें बनेगी, शक्तिशाली किरणें बनती जाएगी और ऐसी शक्तिशाली किरणें जब आत्मा पर संपूर्ण एकाग्रता के साथ पड़ेगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और योग की ज्वाला धधकने लगेगी और उस योग की ज्वाला में हमारे जो पिछले जन्मों के पाप हैं वो दग्ध होते जाएंगे और आत्मा एकदम हल्की फुल्की होती जाएगी। 87 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे तो बाबा को डायरेक्ट हमने एक प्रश्न पूछा कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं है, कैसे समझे, शक्तिशाली योग की निशानी क्या है। तो बाबा ने कहा था शक्तिशाली योग की दो निशानियां हैं, पहली निशानी है शक्तिशाली योगाभ्यास में योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास ऐसा अनुभव होता है, और दूसरी तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की महसूसता क्यों होती है, क्योंकि पापों का बोझ घटता जाता है, और खुशी की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि हम अपने संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये दो निशानियां हैं शक्तिशाली योगाभ्यास की, तो हमें इन दोनों निशानियों के साथ योग के अनुभव को बढ़ाते जाना है। अभी मेरी आत्मा कितनी निर्विकारी बन चुकी है कैसे हमें पता चलेगा, उसको कैसे परखें, निराकारी से निर्विकारी मेरी आत्मा कितनी बनी हुई है इसको चेक करने के लिए दो टेस्ट हैं। दो बातों को चेक करने से हमें पता चलता है कि कहां तक मैं आत्मा निर्विकारी बन चुकी हूं। पहली बात है संकल्पों के चेन को जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है मैं कहां आत्मा खड़ी हूं। सारे दिन भर में संकल्पों के पैटर्न को अगर हम चेक करते हैं और उसमें कभी कभी विकारी संकल्प चलते हैं तो माना मैं द्वापर युग में ही आत्मा खड़ी हूं। कलयुग से तो निकली ऊपर लेकिन द्वापर में ही खड़ी हूं। लेकिन जब मैं आत्मा पवित्र संकल्प से फ्री हो जाती हूं तो समझ लो मैं त्रेता युग में पहुंची हूं। और बहुत महान पवित्र संकल्पों का प्रवाह मन में चलता रहेगा तो समझ लो गोल्डन एजेड स्थिति मेरी बनती जा रही है। तो संकल्पों को चेक करने से हमें पता चलता है कि कितनी मैं आत्मा निर्विकारी बन चुकी हूं। दूसरी बात है जो हमें स्वप्न पड़ते हैं उन सपनों से हमें पता चलता है कि कितनी मैं आत्मा निर्विकारी बनी हूं। अगर जो स्वप्न पड़ते हैं किसी ना किसी विकार से संबंधित होते हैं तो समझ लो मुझ आत्मा में विकारों की खाद विकारों के अंश अभी भी बाकी हैं। जैसे आपके कमरे में बैंगन का टुकड़ा सड़ा हुआ कोने में पड़ा हुआ है तो उससे बदबू आएगी आपको और उसको हटाते ही वो बदबू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे आत्मा में अगर अशुद्ध संकल्प रूपी बदबू निकलती है तो समझ लो उसमें विकारों की खाद अभी भी है। और जैसे वो समाप्त होती है शुद्ध संकल्प का प्रवाह चलता रहेगा। स्वप्न हमें पड़ेंगे लेकिन संगम योग के संबंधित सेवा के संबंधित सतयोग के संबंधित हमें स्वप्न पड़ते जाएंगे। तो स्वप्नों के द्वारा हमें पता चलता है कि मैं आत्मा कहां तक पवित्र बन चुकी हूं और कितना मैंने पुरुषार्थ अभी करना है। क्योंकि मुझे घर वापस जाने के पहले बेदाग हीरा बनना है। कोई भी विकार का दाग मुझ आत्मा पर हो जो मेरी वैल्यू को घटाए उसको मुझे हटाना है चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन इस निर्विकारी स्थिति को तीव्रता से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर एक युक्ति है। एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहें और दूसरे तरफ विशेष पांच दिव्य गुणों को धारण करने का प्रयास करना है। कौन से पांच गुण हैं वो, क्यों इन पांच गुणों पर अभ्यास करना जरूरी है? क्योंकि ये पांच विकार जो आत्मा में प्रवेश होते हैं ये पांच दिव्य गुण के अभाव से होते हैं। पहला विकार काम विकार जो है वो पवित्रता के दिव्य गुण का प्रकाश धीरे 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 डल होता है कम होता है। जैसे त्रेता के अंत में हम पहुंचते हैं काम पवित्रता का जो लाइट है वो डल होता है तो काम विकार का अंधकार उस पर ऑटोमेटिक छा जाता है। तो हमें क्या करना है, पवित्रता के दिव्य गुण को धारण करना है जिससे काम विकार का अंधकार मिटता जाएगा, निर्विकारिता तेजी से बढ़ती जाएगी। दूसरा विकार क्रोध। ये क्रोध विकार क्या है, शीतलता का जो दिव्य गुण है वो धीरे धीरे हम यूज करते हैं वो डल होता है प्रकाश उसका कम होता है तो क्रोध का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। तीसरा जो विकार है लोभ। संतुष्टता का जो दिव्य गुण आत्मा में होता है उसको हम यूज करते हैं सतयुग त्रेता युग में और जैसे वो डल होता है तो लोभ का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। और चौथा विकार है मोह। मोह अर्थात किसी विशेष व्यक्ति से या वस्तु से हमारा एक्स्ट्रा प्यार होना, सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण है। क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ हमें प्यार से रहना है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से एक्स्ट्रा प्यार होना, इसको मोह कहते हैं। तो ये जो दिव्य गुण है उसका अभाव जब होता है तो ये मोह आत्मा में प्रवेश होने लगता है। और पांचवा जो विकार है वो अहंकार है। अहंकार क्यों आता है आत्मा में? नम्रता का जो दिव्य गुण है धीरे 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 हम यूज करते हैं और जब ये डल हो जाता है तो अहंकार रूपी अंधकार आत्मा पर छा जाता है। तो कहने का मतलब है एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें और दूसरी तरफ इन पांच दिव्य गुणों को जीवन में धारण करते रहें तो ये निर्विकारी बनने की जो स्पीड है हमारी बढ़ती जाएगी, तेजी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जनवरी मास चल रहा है। जनवरी मास कहता है जनवरी है जन छोड़ो वरी, एक ही वरी करना है। मैं बाप समान कैसी आत्मा बनी यही हमें चिंता करना है, बाकी सब दुनिया की वरी छोड़ना है। और इस जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग इस मास में किया है, इसलिए शिव बाबा ने इस मास को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है, वरदान दिया है, जिसके कारण इस मास में हम जो आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं, जितनी ऊंची उड़ान इस आध्यात्म आकाश में उड़ना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है आध्यात्मिक अनुभव करने की, वो अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। क्योंकि वरदानी मास अर्थात थोड़ी मेहनत प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना, इसको वरदानी मास कहते हैं। तो हमें इस वरदानी मास का बहुत लाभ लेना है। और ये पहला मास सारे वर्ष का होता है, तो पहले मास में अगर मेरी स्थिति बहुत अच्छी बनती है तो सारे जो 11 मास हैं बचे हुए उन पर उसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से पड़ता जाएगा। कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, जो अच्छी शुरुआत होती है तो कार्य हमारा आधा पूरा हो जाता है। इसलिए हमें इस जनवरी मास का पूरा लाभ लेना है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सुंदर युक्ति करना है। बाबा कहते हैं मुझे 24 घंटे अनुभव कर सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो। अब भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं कंपनी देने के लिए, तो हमने बाबा की कंपनी को निरंतर अनुभव करते जाना है, बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता है, सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति भाव वैभव, और ईश्वर अर्थात स्वयं परमात्मा। व्यक्ति वैभव के साथ तो हम सारा कल्प रहे और बाद में सतयुग से और रहेंगे, लेकिन ईश्वर के साथ रहने का चांस केवल हमें संगम युग में ही मिलता है। इसलिए बाबा के साथ का अनुभव निरंतर हमें करते जाना है। अभी आप महान भाग्यशाली इस धरती पर पहुंचे हुए हैं, मधुबन में पहुंचे हुए हैं। एक प्रयोग अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, जाते समय आपके पास बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की खान अनुभव करेंगे। वो कौन सा प्रयोग है? शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में देखना है और बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जहां मैं जाता हूं जाती हूं, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है और बाबा की कंपनी से मुझे सकास मिल रहा है और एक्स्ट्रा फोर्स से मुझे बहुत अच्छी तरह से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हो रही है। आप इतना सुंदर अनुभव करेंगे, बात मत पूछो। क्योंकि जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है। जब मैं भी बहुत प्यारा बच्चा हूं, प्यारी बच्ची हूं, जैसे शैडो हमारे साथ चलती है, छाया हमारे साथ साथ चलती है, ऐसे बाप दादा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे कंपनी दे रहे हैं और उसका मैं भरपूर आनंद ले रही हूं, ले रहा हूं। और सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक कोई भी संबंध आप लंबे समय के लिए करते हैं तो उसमें कभी कभी बोर होने का चांस होता है। क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी है, नेचर बन चुका है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। जब उसको नवीनता मिलती है तो उस कार्य में उसका उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। इसलिए सारे दिन भर में नवीनता मेंटेन करने के लिए विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहें और इस अनुभूति को और अच्छी तरह से बढ़ाना अगर हम चाहते हैं तो याद का चार्ट रखने पर विशेष अटेंशन दें। क्योंकि याद का चार्ट रखने से अपनी मन और बुद्धि पर हमारा अटेंशन बढ़ता जाता है, पहरा उस पर बढ़ता जाता है और हमारी मन और बुद्धि को सारे दिन भर में डिसिप्लिन में कैसे रखें, बिजी कैसे रखें, ये कला हमारे पास आ जाती है। क्योंकि आत्मा रूपी ये दो बच्चे हैं, ये माया के संग में आकर इन्होंने बहुत शैतानी की, हमारे पास जो भी खजाने थे सारे गवा दिए। अभी यही दो कमाऊ पुत्र हैं, उन्हीं को हमें बाबा के संग में रखना है और बाबा से खजाने लूटना है। तो इसलिए इन दोनों शक्तियों को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखना और अनुशासन में रखना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए याद का चार्ट हमें बहुत मदद करता है। ये मैंने भी अनुभव किया है। जब मैं मधुबन में आया 76 में तो मैंने याद का चार्ट मेंटेन करना शुरू किया। हर घंटे को या हर दो घंटे को हमें मन बुद्धि को काम देना है, एक्सरसाइज या किसी बात पर अभ्यास करने के लिए उसको काम देना है और उसके बाद हमें घंटा पूरा हो जाए, दो घंटा पूरा हो जाए, उसको हमें चेक करना है और जितना हमें सफलता उसमें मिलती है उतना हम लिखें। कभी हम बहुत बिजी रहते हैं, नहीं होती है याद बाबा की, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे घंटा पूरा होता है दृढ़ संकल्प करें कि अभी दूसरे घंटे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करना है, तो अटेंशन की पावर ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है और उसके कारण अविनाशी कमाई हमारी बढ़ती जाती है। आप यहां आए हैं, अविनाशी कमाई करने के लिए। तो हमें क्या करना है, ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, मुरली में बहुत ज्ञान का खजाना हमें मिलता है, क्लासेस में भी हमें ज्ञान का खजाना मिलता है, लेकिन अभी आवश्यकता है अलौकिक अनुभव बढ़ाने की। जितना अलौकिक अनुभव का खजाना मुझ आत्मा के पास बढ़ता जाएगा, उतनी मैं आत्मा माला माल बनती जाओगी। क्योंकि बाबा की यही चाहना है कि मेरे बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बने। तो जितने जितने अलौकिक अनुभव हमारे पास बढ़ते जाएंगे, उतना इस ज्ञान मार्ग में हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। और जितनी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, उतनी हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाती है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े हैं शांति स्तंभ के रूप में, तो बाबा को सामने खड़े हुए देखना है और बाप समान मुझे बनना है, यही तात और यही लात सदा लगी रहे, तो स्वतः ही बाप समान हम बनते जाएंगे। और जितने समान बनते जाएंगे, उतनी समीपता की निशानी अनुभव करते जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाप समान संस्कार हमारे बनते जाएंगे संगम युग में, तो सतयुग में हम कृष्ण के साथ में राज करेंगे। हम सभी चाहते हैं सारे कल्प में ब्रह्मा बाबा के साथ में समीप रहें, लेकिन उसका आधार है संगम युग में बाप समान बने, बाबा के समीप अनुभव करें और बाप समान संस्कारों का मिलन का राज करते रहें, तो स्वतः ही कृष्ण के साथ भी हम सतयुग से रहेंगे। तो अभी एक गोल्डन चांस हमें बाबा ने दिया है, जनवरी मास में आप मधुबन में हैं, इसका लाभ आप बहुत ले सकते हैं। एक एक पल को हम सफल करके स्वयं को माला माल करते हैं और चारों धाम बाबा के सूक्ष्म रीति से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस धरणी पर आप पहुंचे हुए हैं। तो जैसी तपस्या ब्रह्मा बाबा ने की है, उस तपस्या को हमें सामने रखना है। बाबा ने कठोर तपस्या की साधना के द्वारा मधुबन को तपो भूमि बनाया है, तपस्थली बनाया है, और उनके तप की साधना से हमें चार धाम करने का चांस मिल रहा है। तो बस तपस्या 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 यही धुन हमें लगनी चाहिए, तो आप माला माल हो जाएंगे। तो निराकारी से निर्विकारी मुझे बनना है और निर्विकारी से निरहंकारी बनना है। भाई ये निरहंकारी शब्द बाबा ने क्यों यूज किया है? निर्विकारी में पांच विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार भी उसमें आ गया पांचवा, फिर भी बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। भाई क्या राज है इसके पीछे? मैंने 95 में प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था और उनको पूछा क्यों बाबा ने ये निरहंकारी शब्द का प्रयोग किया है, इसके पीछे क्या राज है, मुझे स्पष्ट बताइए। तो दादी जी ने बताया, जब हम बाबा के पास आते हैं हमारी झोली खाली होती है, और जब हम बाबा की पालना लेते हैं, योग साधना वगैरह करते हैं, तो हमें योग की सिद्धियां प्राप्तियां खजाने प्राप्त होते हैं, हम माला माल होते हैं, और जो प्राप्तियां बाबा से हमें होती हैं, उसका हमें अहंकार आता है, मैं बहुत अच्छा योगी हूं, बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, बहुत अच्छा स्पीच दे सकता हूं, बहुत अच्छी मेरी बुद्धि प्लानिंग बुद्धि है। तो ये जो भी प्राप्तियां, भाई मैं बाबा के पास आया तो खाली झोली थी, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाबा की अमानत है, अमानत बाबा की है और अहंकार मुझे उसका हो रहा है। तो ये भी सूक्ष्म में अहंकार न हो, इससे भी फ्री रहना, उसको कहते हैं निरहंकारी बनना। जितना जो व्यक्ति बड़ा होता है उतना वो निर्माण होता है, ये उसकी निशानी है। स्वभाव से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, बाबा सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं। यार आप देखेंगे हर मुरली के अंत में बाबा याद प्यार नमस्ते करते हैं, हमारे सामने झुकते हैं, कितना बाबा निरहंकारी है। तो बाबा से हमें सीखना है, जितने बाबा ऊंच होते हुए एकदम नम्रचित्त है, निरहंकारी है, ऐसे मुझे भी बनना है। तो हम सर्व खजानों से संपन्न बनते जाएंगे और अपने संपूर्णता के लक्ष्य के समीप पहुंचते जाएंगे। ओम शांति।